नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। ये मंदिर निर्माण के पूर्ण होने तथा सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है।
आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। आज उस यज्ञ की पूर्णावती है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र इस देश के डीएनए में है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है।
कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। साथियों, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में उत्तीर मेरूर गांव है। वहां हजारों वर्ष पहले का एक शिलालेख है। उसमें बताया गया है कि उस कालखंड में भी कैसे लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलती थी, लोग कैसे सरकार चुनते थे। लेकिन हमारे यहां तो मैग्ना कार्टा की प्रशंसा का ही चलन रहा।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सुबह अयोध्या में एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने सप्त मंदिर का दौरा किया और शेषावतार मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हरियाणा में कुरुक्षेत्र जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। शहीदी दिवस के सम्मान में केंद्र सरकार एक वर्ष तक चलने वाला स्मरण उत्सव मना रही है।
अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में बनाए गए नवनिर्मित भवन पांचजन्य का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री शाम को ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना करेंगे। यह सरोवर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद् गीता का दिव्य ज्ञान यहीं दिया था। प्रधानमंत्री का यह दौरा कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान हो रहा है, जो 15 नवंबर को शुरू हुआ था और 5 दिसंबर तक चलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारतीय स्टेट बैंक SBI ने कहा है कि नई श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन से अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा और देश में बेरोजगारी दर में कमी आएगी। बैंक की रिपोर्ट के अनुसार नई श्रम संहिताओं से बेरोजगारी दर में 1.3% तक की कमी आ सकती है। इससे 77 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित होंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न राख के बादलों के आज शाम तक भारत से चीन की ओर बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि राख के बादलों से केवल विमानों के संचालन पर असर पड़ा है, मौसम या वायु गुणवत्ता पर इसका कोई प्रभाव नहीं देखा जा रहा है।
इथियोपिया से डेवलप हुआ वोल्केनिक आश भी धीरे धीरे वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करते हुए नॉर्थ वेस्ट इंडिया से बिहार, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, राजधानी नेपाल वगैरह होते हुए आज शाम तक इंडियन रीजन को पार कर जाएगा और चाइना की तरफ ये आगे बढ़ रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट है ये सिर्फ अपर ट्रोपोस्फियर में जो हाइट है वही हाइट में देखने को मिल रहा है। ये जो वोल्केनिक आश है अभी इंडियन रीजन में सरफेस में कोई इम्पैक्ट नहीं है, यानी वेदर और एयर क्वालिटी के ऊपर क्या कोई प्रभाव नहीं है।
पाकिस्तानी सेना के हमले में अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में एक रिहायशी इलाके में 9 बच्चों सहित 10 नागरिक मारे गए। अफगानिस्तान सरकार के अनुसार यह हमला आधी रात के बाद हुआ और इसमें एक स्थानीय घर को निशाना बनाया गया। हमले से सीमा पर तनाव फिर से बढ़ गया है। भारत के साथ गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच की दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट पर 260 रन पर पारी घोषित कर भारत को जीत के लिए 549 रन का लक्ष्य दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन और भारत ने अपनी पहली पारी में 201 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।